حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذي سمي في السماء احمد وفي الارض بأبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات
اللهم صل
على محمد. اما بعد، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قبولیت دعا مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اذان محترم، عباد الرحمن کے اوصاف، عباد الرحمن کے صفات کے موضوع پر آپ سے بات جاری ہے۔ اب تک چار صفات ہم بیان کر چکے ہیں، جس میں سے پہلی صفت ان کے زمین پر چلتے ہوئے چال میں نرمی، اعتدال، غرور و تکبر سے پاک چال۔ دوسری صفت ان کی کہ جب ان کا جاہلوں سے سامنا ہوتا ہے، جاہل جب ان کے ساتھ برے انداز میں بات کرتے ہیں तो ये जवाब में उनको सलामती का पैगाम देते हुए अलग हो जाते हैं, उनसे उलझते नहीं हैं। तीसरी सिफत उनकी कि वो रात में, रात की तारीकी में अपने रब के हुजूर क़याम और सजदे की हालत में होते हैं। चौथी सिफत जो कल बयान की कि उनको अपने रब के अजाब का खौफ रहता है, और खौफ और रजा की दरमियानी हालत कि जिस हालत की ताकीद की है कि मोमिन का दिल इस अंदाज में होता है कि उसमें खौफ का नूर होता है और रजा का नूर होता है। अगर इन दोनों का वज़न किया जाए तो वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। आज इबादुर रहमान की पांचवी सिफत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, बहुत अहम भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मरबूत हैं और ज़िंदगी के हर दौर के साथ, हर एज के साथ आज की इस सिफत का ताल्लुक है। अल्लाह ताला का इरशाद है इसी सूरह फुरकान की नायात में, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما। ये वो लोग हैं, यानी ये जो इबादुर्रहमान हैं, ये जो रहमान के बंदे हैं, जब ये इन्फाक करते हैं, जब ये खर्च करते हैं तो न ही इसराफ करते हैं और न बुखल से काम लेते हैं, बल्कि उन दोनों के दरमियान एतदाल और मयाना रवि का रास्ता अपनाते हैं। इबादुर्रहमान की ये सिफत, चाहे ये खर्च राह खुदा में हो, चाहे ये खर्च अपनी ज़िंदगी के मामलात में हो, चाहे अपने खानवादे के ऊपर खर्च करें, चाहे अपनी ज़ात पर खर्च करें, चाहे इन्फाक करें, अल्लाह के राह में खर्च करें, हर दो सूरत हर मामले के अंदर इबादुर रहमान जब खर्च करेगा तो न इसराफ करेगा और न ही बुखल से काम लेगा, वो एतदाल के साथ रहेगा। यहाँ पर एतदाल अगर न हो, यानी अगर इंसान मयाना रवि के साथ न हो, तो वो अफराद या तफरीक में होता है, या हद से आगे चला जाता है या फिर हद से नीचे रह जाता है, अफराद में रहेगा या तफरीक में रहेगा। जो अफराद में हो, तफरीक में हो, वो उसको मौला अली अलैहि सलाम की एक हदीस है जिसमें मौलाए मुत्तकियान ने जाहिल की निशानियों में से बताया है, जाहिल की निशानी यह है कि वो अफराद और तफरीक में होता है, यानी एतदाल में नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं होता, वो हद से आगे होगा या फिर ज़रूरत भी पूरी नहीं कर रहा होगा। जब एतदाल न हो तो बकौल मेरे मौला के जाहिल की निशानियों में से ये है कि वो अफराद और तफरीक में होता है। एक और अहम पैगाम, उसके बाद अपने मौजू को ज़रा वजाहत के साथ आगाज़ करेंगे, वो ये कि अगर आप गौर करें इबादुर रहमान की पहली सिफत का ताल्लुक इंसान की ज़ात के साथ, अब्द खुदा है, पहली सिफत का ताल्लुक ज़ात के साथ है, चाल में मयाना रवि, ख्वा वो चलने की चाल हो या ज़िंदगी की चाल हो। दूसरी सिफत का ताल्लुक भी ज़ात के साथ है, कुछ उसका वास्ता दूसरों के साथ भी पड़ता है। वैज़ा ख़ातबहुम अल-जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिल बुरे अंदाज में पेश आए तो जवाब में ये बुरा अंदाज नहीं अपनाते बल्कि सलामती का पैगाम दे करके ना हो जाते। तीसरा इबादत शब जिंदादारी नमाज शब, चौथा खौफ खुदा। अब पांचवा खर्च की बात आ गई, और खर्च का ताल्लुक माशरे के साथ, खर्च का ताल्लुक इंसानों के साथ है, खर्च का ताल्लुक जिस तरह इंसान की ज़ात के साथ है, इन्फाक की बात करें तो माशरे के साथ है। माशरे का महरूम तबका, यहाँ शेख मोहसिन कराइती कहते हैं कि इस चीज़ इसके अंदर जो बारीक और लतीफ़ नुक्ता है वो ये कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ शब जिंदादार है, ऐसा नहीं होगा कि फ़कत खौफ खुदा है, बल्कि शब जिंदादारी और खौफ खुदा
اسے اس بات پر تیار کرتے ہیں کہ وہ معاشرے کے محروم اور مسکین طبقے کے اوپر خرچ کرے۔ یہاں پر جو خرچ کی بات ہوئی ہے، آغا محسن کراچی سے نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ نماز شب، یہ خوف خدا اسے اس بات کی طرف لے آتا ہے، آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ وہ معاشرے کے محروم، معاشرے کے مسکین فقیر طبقے کے اوپر انفاق کرتا ہے۔ پس عزیزان محترم، اب جب موضوع یہ ہے کہ عباد خدا، عباد الرحمن خرچ کے معاملے میں نہ فضول خرچی، نہ اسراف، نہ بخل، تو اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اسراف کو اور بخل کو واضح کرتے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان دونوں میں نہیں جانا تو درمیانی صورت خود بخود سمجھ میں آئے گی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر زحمت نہ ہو، کیونکہ آگے جگہ خالی ہیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے دقت ہو جاتی ہے، اگر جوان ذرا ایک دفعہ آگے ہو جائیں، اگلے جگہوں کو پر کر لیں تاکہ جو بھی پیچھے سے تشریف لائیں ان کو آسانی سے پیچھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ درود پڑھتے ہوئے ذرا جگہوں کو پر کریں گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک درود پھر پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اسراف کا جو تصور اسلام میں، اسراف کی جو مذمت ہے، فضول خرچی کی جو مذمت ہے، اور خود فضول خرچی کس کس چیز کو کہہ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، امام فرماتے ہیں باطل کی راہ میں خرچ کرنا اسراف ہے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر باطل پہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام ہے جو حق نہیں ہے، کوئی ایسا کام تھا جس کی حق نہیں رکھتا، جس میں حق نہیں ہے، باطل ہے، بے شک اس پہ بہت کم بھی خرچ کرے وہ اسراف میں آتا ہے، کم بھی خرچ کرے اسراف میں آتا ہے۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ بس یاد رکھیں، اسراف کا تعلق فقط مال کے ساتھ نہیں ہے، فقط دولت کے ساتھ نہیں ہے، فقط دولت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اسراف کا۔ ہر چیز زندگی سے مربوط، ہر چیز میں اسراف، اور انسان اس کا شکار ہوتا ہے۔ حتیٰ ایک حدیث کا ایک حصہ ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں اسراف ہے، ہر چیز میں، فی الوضوء اسراف، رسول خدا کہتے ہیں، حتیٰ کہ وضو میں بھی اسراف ہے۔ یہ جملہ کہہ کے فی الوضوء اسراف، وضو میں بھی اسراف ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وفی کل شیء اسراف، ہر چیز میں اسراف ہے۔ جوان یہاں پر ہیں، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں وقت کا اسراف، وقت کو فضول خرچ کرنا۔ موبائل پہ اگر ہمارے دن کے 12 سے 14 گھنٹے موبائل میں گزرتے ہیں تو اسراف ہے، جوانی کا اسراف ہے، وقت کا اسراف ہے۔ یاد رہے اسراف فقط مال نہیں، ہر چیز کا اسراف ہے۔ اور خدا سوال پوچھے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، صلاحیتوں کا بھی اسراف ہوتا ہے۔ آپ کے اندر کسی چیز کی ایبلٹی ہے، اب اس صلاحیت کو آپ باطل کے لیے خرچ کریں تو اسراف کر رہے ہیں، چاہے تھوڑا ہی کر رہے ہو۔ لہذا اسراف، اعتدال سے ہٹ جانا، میانہ روی سے ہٹ جانا، یہ اسراف ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بات یہاں پر اہم ہے، ایک مثال غذا کی دے کے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں ایک شخص نے اپنے لیے غذا تیار کی، और वो गिज़ा 1000 ग्राम उसने तैयार कर ली, 800 ग्राम खा ली, 200 ग्राम ज़ाया हो गई, फेंक दी। उसने कितना इसराफ़ किया, 200 ग्राम का इसराफ़ किया। आप सब मौजूद हैं ना यहाँ पे, कितना इसराफ़ हुआ, 200 ग्राम का। नहीं, यहाँ पर देखना पड़ेगा उसकी ज़रूरत कितनी थी। उसकी ज़रूरत 600 ग्राम गिज़ा की थी, 600 ग्राम गिज़ा की थी। उसने 1000 ग्राम तैयार किया, खा लिया 800 ग्राम, यानी अपनी ज़रूरत से 200 ग्राम ज़्यादा खा लिया है, वो भी इसराफ है। वो सिर्फ जो फेंका है ना, वो इसराफ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप शादी में गए हैं इसलिए आप अपने मैदे को जितना भर सकते हैं भर लें, ना अजीज, इसराफ है, ज्यादती है, जुल्म है। एक वो हमारे इस इलाके का शायद एक ट्रेंड भी बना होता है, किसी ने कहा था कि ये दुनिया का वो वाहिद खित्ता है जहाँ शादी खाने के लिए जाते हैं, कहता है शादी खाने जा रहे हैं। याद रखिएगा, 1000 ग्राम गिज़ा, इसकी ज़रूरत 600 ग्राम की थी, खाया इसने 800 ग्राम है, तो इसराफ इसने 400 ग्राम का किया है। एक तो अपने खाने में एतदाल से ऊपर चला गया और बाकी जो 200 ग्राम ज़ाया हुआ, ये इसराफ इस तरह से है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई चीज़ फेंकी नहीं है, अगर कोई चीज़ डस्टबिन में नहीं डाली तो इसराफ नहीं हुआ ना। अगर आप ज़रूरत से आगे चले गए तो इसराफ हुए। और इसराफ करने वाले को कुरान मजीद ने शैतान का भाई कहा है, इख्वानुश्शयातीन, शैतान का भाई। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो आयत है सूरह फुरकान की, यही आयत के जब इनके सामने वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, इस आयत के साथ दो वाक़ियात हैं। एक आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का है और दूसरा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। आठवें इमाम के पास एक शख्स है जिसका नाम अब्बासी है, वो आया, उसने आकर सवाल किया, कहा मौला मेरी जो आमदन है, मेरी जो इनकम है, मैं उसको अपने बच्चों पे, अपने अहलोयाल पे, अपने घर वालों पे कैसे खर्च करूं? मुझे आप तरतीब बता दें कि मैं अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने अहलोयाल पर अपने इस आमदन को किस अंदाज में खर्च करूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने इस अब्बासी को जवाब दिया, तुम्हारा खर्च दो नापसंदीदा कामों के दरमियान में होना चाहिए, तुम्हारा खर्च दो नापसंदीदा कामों के दरमियान में होना चाहिए। तो इसने कहा इसका क्या मतलब है मौला? तो इमाम ने यहाँ पर सवालिया अंदाज में इससे कहा, क्या तुमने कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ये कलाम नहीं पढ़ा है? यूं अंदाज, इस अंदाज में इमाम ने आयत की तिलावत की कि क्या तुमने कुरान मजीद में अल्लाह ताला का ये कलाम नहीं पढ़ा? फिर इस आयत की तिलावत की इमाम ने, वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, कि जब वो इन्फाक करते हैं, खर्च करते हैं, तो वो न इसराफ करते हैं न बुखल करते हैं। फिर इमाम ने कहा कि अफराद खाना के अखराजात, ज़रूरियात ज़िंदगी और उन पर खर्च करने में एतदाल से काम लो। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इस आयत के बारे में सवाल किया गया। इमाम से पूछा गया कि मौला ये लम युसरिफू और लम यक़्तुरू का मतलब कैसे? तो इमाम ने इसको प्रैक्टिकल में बयान किया, प्रैक्टिकल में बयान किया। यहाँ पर एक ज़मन में एक नुक्ता अर्ज करूँगा, हम में से जो कुरान मजीद पढ़ाने वाले हैं उनके लिए भी एक इसके अंदर नुक्ता है। इमाम ने आयत ही समझाई है लेकिन प्रैक्टिकल करके समझाई है। क्या किया मेरे मौला ने? जब पूछा कि लम युसरिफ़ू और लम यक़्तुरू के बैन इसको हम कैसे समझें, तो मौला ने अपनी मुट्ठी में कुछ कंकर थे, संग्रेज़े थे, छोटे छोटे पत्थर थे, हम अपनी ज़बान में बजरी कह लीजिए, बजरी थी। इमाम ने बजरी उठाई, अपनी मुट्ठी में और उसको भींच लिया, मुट्ठी को इस तरह से भींचा झटका, लेकिन कोई एक कंकर भी मुट्ठी से बाहर नहीं गिरा। इमाम ने कहा ये यकतुरु है, ये क्या है यकतुरु, यानी इस कदर तुमने टाइट किया हुआ है कि एक कंकर भी बाहर नहीं आ रहा, तो ये यकतुरु है। इमाम ने दोबारा उसको गिराकर दोबारा वजरी उठाई और हाथ को बिल्कुल खुला रख के हिलाया, हिलाया तो हाथ पर कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचाया, सारे जहर गिर गए नीचे जाहिर सी बात। इमाम ने कहा ये युसरिफ हुआ। उसके बाद दोबारा इमाम ने उठाया, हाथ को कुछ खुला और कुछ बंद रखा, फिर हिलाया। अब जब हिलाया तो कुछ कंकर गिर गए और कुछ कंकर हाथ में बाकी रह गए। इमाम ने कहा ये कवामा है, ये कवामा है, बिल्कुल भेंच लिया, एक कंकर भी बाहर नहीं आया, बुखल, हाथ को ऐसे खुले रखा कि कुछ भी हाथ में बाकी नहीं रहा, इसराफ, इस तरह से रखा कि कुछ बाहर भी आ रहे और कुछ रह भी गया, इसको कवाम कहा। बस याद रखें, कंजूस जो होता है, बखील जिसको कहते हैं, बुखल, हमारी ज़ुबान में मुहावरा है कि काटो तो खून नहीं निकलता, यानी ये कंजूस होता है, असल में खर्च नहीं करते। अभी इसराफ की बात है, उसकी तरफ आते हैं अभी इंशाल्लाह। तो बस कुरान मजीद में भी इसी तरतीब से तीन आयत आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। पहली आयत सूरह आराफ की आयत नंबर 31 है, उसका एक हिस्सा है। अल्लाह का इरशाद क्या है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो इसराफ मत करो। अल्लाह तुझे खाने पीने से नहीं रोक रहा, अल्लाह तुम्हें अच्छा खाने से भी नहीं रोक रहा, अल्लाह तुम्हें पसंद का खाने से भी नहीं रोक रहा, खाओ पियो, खैर वो हराम हलाल अपनी जगह पर, तैयब व नजिस अपनी जगह पर, उसका लिहाज उसका ख्याल रखना, वैला खाओ पियो, कुलू वशरबू, खाओ पियो, काम क्या करो, वला तुसरिफू, इसराफ मत करो, ज़ाया मत करो। और मैंने पहले अर्ज़ कर दिया आपको, ज़ाया करने का मतलब ये नहीं है कि फेंकना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना भी ज़ाया है, कुछ लोग ज़्यादा खा लेते हैं। एक शख्स ने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब उस सहेला भी नहीं जा रहा था, उसे उठा के हकीम के पास ले आए, तो कहा ज़्यादा खा लिया है, मुश्किल बन गई है, तो हकीम साहब ने कहा हथेली आगे करो, उसने हथेली आगे कर दी, हकीम साहब ने थोड़ी सी पक्की डाल दी, कहा इसे खा लो, ये बहुत ज़्यादा को पेटू था, कहता हकीम साहब अगर इतने की गुंजाइश होती तो एक आध नवाला और खा लेता मैं, कहा फक्के भी नहीं जा सकती अंदर, अगर इस अंदाज में को खा रहा है तो हजरत ज़ाया कर रहे हैं, इसराफ ही है ये भी, सिर्फ फेंकना इसराफ नहीं है। बाज़ औक़ात ये होता है, यानी घर में माएँ भी बच्चों से कह रहती हैं खाओ खाओ वरना ज़ाया हो जाएगा, ये जो आप खिला रहे हैं अगर उसका पेट भर चुका है, हमारे एक उस्ताद कहते थे खा लो, खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, बेशक बंदा ज़ाया हो जाए, खाना सही ज़ाया करना, बंदा ज़ाया हो जाए कोई मसला नहीं। तो यहाँ माएँ बहनें भी इसका लिहाज रखें, इस इतना डाल दिया बच्चे के लिए जितना वो खा सकता है, ये नहीं कि ज़्यादा डालने के बाद अब उसको धमकी लगाई जा रही, इसराफ हो जाता है, सारा ख़त्म करो। अब जवानों को बच्चों को समझ आ जानी चाहिए, सिर्फ प्लेट में बच जाना वैसे तो नहीं डालने, वो हदीस आएगी आगे, ज़्यादा खा लेना भी इसराफ, ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी इसराफ ही है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये तो था कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अब दूसरी जगह पर सूरह अनआम की आयत नंबर 141 में 141 में यहाँ खुदा ने थोड़ा सा प्यार वाले अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में, नरमी के साथ बात समझाई है। ऊपर वाले में तो ऑर्डर था वला तुसरिफू, ऐसा मत करो, यहाँ पर फिर वजह बताई है कि इसराफ क्यों न करें। सवाल जाना कि क्यों ना करें इसराफ, फजूल खर्ची क्यों ना करें, क्या वजह है, अल्लाह तूने मना किया है ना, या अल्लाह तूने सूरह आराफ में कहा ला तुसरिफ, ना करो फजूल खर्ची मत करो। अब मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं मेरे परवरदिगार क्यों ना करो, क्या होता है इससे, अगर मैंने फजूल खर्ची की, अगर मैंने इसराफ किया तो इससे क्या होता है, इसका नतीजा क्या निकलता है? अब आता है समीमियत वाला जुमला, अब आता है मोहब्बत वाली बात, अब आती है प्यार, खुदा का अपने बंदे के साथ इश्क व मोहब्बत। क्या कहा सूरह अनाम की आयत नंबर 141 में, वला तुसरिफू, मेरे बंदे इसराफ न कर। क्यों? इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, क्योंकि मैं इसराफ करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। अगर तू इसराफ कर दे तुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। अब ये कुछ छोटा मसला नहीं है, तकब्बुर की तरह का है। मोहब्बत खुदा मुतकब्बिर को नसीब नहीं होती, मोहब्बत खुदा जालिम को नसीब नहीं होती। मोहब्बत अल्लाह की कौन सी मोहब्बत? 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला परवरदिगार मुझे और आपको बड़े प्यार में, बड़े लाड के साथ, जिस तरह माँ नहीं करती सर पे हाथ फेर के प्यार करके बच्चे को बात समझाते हुए, यहाँ रहमत खुदा उसी अंदाज में उसको 70 गुना ले जाए उस मोहब्बत को, उस अंदाज में मेरा रब मुझसे और आपसे ये कह रहा है, ऐ मेरे बंदे इसराफ न कर, क्योंकि अगर तू इसराफ करेगा तो फिर याद रहे कि फिर मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी तुझे, मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। और मैं और आप किस मौला के मानने वाले हैं? हुसैन इब्न अली। और हुसैन इब्न अली का फरमान क्या है? हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी का उसूल और कुलिया क्या है? खुदाया, दुआ रफा का वो जुमला, खुदाया जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खोया उसने क्या पाया। खुदा अगर मैं इसराफ करूं और तेरी मोहब्बत से महरूम हो जाऊं तो फिर मेरे पास बचता क्या है, फिर बाकी क्या रह गया मेरे पास? सारी दुनिया अगर हो खुदा ना हो तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ऐजान मोहतरम, ये जो सूरह अनआम की इस आयत में अल्लाह का जो लब व लहजा है, इसको अपने अंदर महसूस करें, फील करना, महसूस करना, इसको अपने अंदर एक इंसान महसूस करता है परवरदिगार की मोहब्बत के उस जायके को, कितने प्यार भरे अंदाज में अल्लाह के रहला तो सिर्फ हो, हे मेरे बंदे इसराफ न कर, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, क्योंकि मैं इसराफ करने वाले से मोहब्बत नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता मैं इसराफ करने वाले से। खुदा अगर तेरी मोहब्बत न मिले तो फिर बंदे के पास रहता क्या है? और फिर अर्ज के मौला हुसैन का, आप मौला अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला सुने, मौला मुत्तकियान क्या कहते हैं मोहब्बत खुदा और इसके बारे में दुआ कुमेल का वो जुमला, खुदाया अगर तेरी जहन्नुम की आग बर्दाश्त भी कर ली जाए तो तेरी रहमत से जुदाई नहीं बर्दाश्त हो सकती। ये वही मोहब्बत, यहाँ खुदा की तरफ से मोहब्बत का इजहार है, दुआ कुमेल में बंदे की तरफ से मोहब्बत और लाड का इजहार है। खुदाया यानी मैं तुझसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ मेरे परवरदिगार, अगर मेरे गुनाहों की वजह से मेरे ऊपर जहन्नम का अजाब लिख दिया जाए तो मेरी कैफियत यह है मेरे मालिक कि मैं अगर जहन्नम की उस आग को बर्दाश्त कर भी लूँ तो मेरे लिए जहन्नम का जो जहन्नम की जो सज़ा है, जहन्नम का जो अजाब है, वो ज़्यादा तकलीफ दे। किस वजह से है? इस वजह से नहीं कि वो आग मुझे जलाएगी, इस वजह से कि मैं तेरी रहमत से दूर हो जाऊंगा। बस ऐजान मोहतरम, ये जो बड़े लाड और प्यार में अल्लाह ने समझाया है इसको अपने अंदर उतारना है। इसराफ ना कर मेरे बंदे, क्योंकि तू इसराफ करेगा तो तुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। अब ज़्यादा खोल कर वाज़े अंदाज में, लम युसरिफू वलम यफ्तुरू, दोनों को ज़्यादा वाज़े अंदाज में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 29 में अल्लाह ने बयान कर दिया, बहुत वाज़े करके मिसाल के साथ। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अगर आपकी तवज्जो है तो ज़रा बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़िए। अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तजअल यदक मगलूला مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورا। इस आयत में क्या करना कहता है कि याद रखो इस तरह के मत बनो खर्च करने के मामले में, इन्फाक करने के मामले में, चाहे वो खर्च माल का हो, वक्त का हो, सलाहियत का हो, किसी भी चीज़ का खर्च हो, तो उसमें तुम ऐसे मत बनो। क्या ऐसा ना करना कि अपना हाथ गर्दन से बांध लो कि देना ही ना पड़े। यदक मगलूलतन, कि ये जो कहा ना इलाउनुका, कि हाथ को गर्दन से ना बांध लेना, यानी हाथ होता है ना गर्दन से बांधना, देना, देने से रोक रहा है ना। जैसे एक बंदा बहुत ज़्यादा ही बखील था, पानी में डूब रहा था, पानी में गिर गया, नहर में किसी जगह, तैरना आता नहीं था, डूब रहा है, गोते खा रहा है, डूबने वाला है, तो किसी ने बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, अपना हाथ दे दो, हाथ दे दो, तो हाथ नहीं दे रहा। उसने कई दफ़ा कहा हाथ दे दो, हाथ नहीं दे रहा। उसका जानने वाला को खड़ा था, उसको पता देखा कि वो गिर गया है, उस जानने वाले ने इस बचाने वाले को कहा तुम जो कह रहे हो ना दे दो, तो इसकी आदत ही नहीं है देने की, इसकी आदत ही नहीं है देने वाली। ये यद का मगलूलतन इला उनुकित, हाथ का गर्दन से बंध जाना, का इसकी आदत ही नहीं है देने वाली, इसको कहो कि ये मेरा हाथ ले लो तो फौरन ले लेगा। तो बचाने वाला बेचारा नेक शरीफ इंसान, उसने कहा मेरा हाथ ले लो, तो फौरन आगे से हाथ निकाल के लेके आ गए। तो बात हो जाता है इस तरह। ये मगलूलतन इला उनुकित इंसान के बारे में ही खुदा ने बात की है। ऐसे मत हो जाना कि हाथ पर हाथ को अपने गर्दन से बांध लो कि देने वाली आदत ही ना हो, हो ही नहीं आदत। आगा अली मौसवी मरहूम को एक वाकया सुनाते थे, उन्होंने खुद यकीन उन्होंने खुद ही बनाया था, लतीफ़ा उन्होंने बनाया था और उलमा को सुनाया करते। एक दफ़ा दुरूद पढ़े उनकी रूह की शादी के लिए, और अगर हैदर मौसवी का इंतकाल हुआ है, दोनों की अरवाह के साल सवाब और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुरूद पड़े मोहम्मद वाले। तलबा थे, उलमा बैठे हुए थे, तो आगा अली मौसवी ने एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को बनाया है और उसको एक बड़ा सा डोल दिया है, डोल, और उसके हाथ में उस डोल को मारने वाला तोड़ा दिया है, और उससे कहा है कि जब भी कोई मौलवी सदका दे तो इस डोल को एक दफ़ा मारो। तो उसके बाद फिर खुद ही कहते हैं, फिर किसी ने पूछा बताएं आज तक उस फरिश्ते ने कितनी दफ़ा डोल को मारा होगा, कहते जवाब के तो नहीं, आज तक एक दफ़ा भी नहीं मारा, बस फरिश्ते ऐसे खड़ा है, क्योंकि ना कोई मौलवी सदका देता है ना उसे डोल पर मारने की नौबत आती है। तो खैर ये एक उसमें था शुगल में मिजाह में, लेकिन ये हो भी सकता है, ये मुमकिन भी है, क्योंकि तालिब इल्म हो सकता है कि इस तरह मुतवज्जे ना हो कि उसे भी इन्फाक करना है, उसे भी खर्च करना है। ऐसा ना हो कि वो कुरान की आयात जो खर्च करने की हैं, कुरान की आयात जहाँ पे खुदा इन्फाक करने की दावत देता है, ऐसा ना हो कि तालिब इल्म उनको सिर्फ इसलिए पढ़े कि दूसरों को सुनाना है, तो इससे गुरेज करना चाहिए। बड़ा ख़तरनाक मरहला है हमारे लिए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह कह रहा है कि ना ऐसा करो कि अपना हाथ गर्दन से बांध लो कि तुम्हारा हाथ बंद जाए गर्दन के साथ कि देने की आदत ही ना हो, गलत है। दूसरा क्या कहा, और नहीं ऐसा वाला तबसुत हुआ कुल बस, ऐसा ना हो कि हाथ को ऐसा खुला रखो, इतना खुला रखो कि आखिर में खाली हाथ हो जाओ और फिर काबिल मलामत हो जाओ, तुम पर मलामत की जाएगी, ये तुमने क्या कर दिया, जितना था सारा दे दिया। तो बस बैन व बैन दालिक कवामा, दरमियान में रहना है, एतदाल में रहना है। अब एक अहम मौजू है खर्च करने के मामले में। बाज लोग खर्च करते हैं, बखील नहीं होते, खर्च करते हैं, बड़ी बड़ी खतीर रकमें खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, राह खुदा में खर्च करते हैं, लेकिन उनका खर्च करना उन्हें को फ़ायदा नहीं देता, उनका खर्च करना उनके नुकसान में ही जाता है। कुरान की आयत है गालिबन सूरह कहफ़ की है कि जिसमें अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हें अमल के बारे में ज़्यादा घाटे वाले का बताऊँ, कुल हल उनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अमलन, अमल में सबसे घाटे के बारे में बताऊं कौन है, अल्लज़ीन ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, अमल में सबसे ज्यादा नुकसान में वो है जिसकी दुनिया में की गई कोशिशें बातिल हो गई, जिसकी दुनिया में की गई सारी कोशिशें ज़ाया हो गई। जबकि कअन्नहुम युहसिनून सुनअ, जबकि वो उसकी हालत ये थी कि वो तो ये सोच के बैठा था कि उसने तो नेकियों के पहाड़ बना लिए हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अब इस मौजू को अमीर अल-मोमिनीन ने नहजुल बलागा में एक जगह बयान किया है, वहीं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी खर्च किया, इस इन्फाक किया, राय खुदा में किया या किसी भी तौर पर, लेकिन नाहक किया है, जरूरत नहीं थी, एक चीज की जरूरत नहीं थी उसके ऊपर खर्च करते गए। रहबर मौजम एक मिसाल देते हैं, कहते हैं एक मस्जिद में रहबर दर्स दे रहे थे 1974 में, जब वो दर्स दे रहे थे मस्जिद इमाम हसन में मशहद में, तो रहबर मौजम कहते हैं मैं जिस मस्जिद में बैठा हूँ इस मस्जिद में रंग और रोगन की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद साफ सुथरी है, पेंट हो चुका है, साफ सुथरी है, लेकिन अगर कोई यहाँ पर बेहतरीन किस्म का पेंट लेके आए और आकर दोबारा इसको रोगन करे, तो आगा कहते हैं ये इन्फाक नहीं है, इसने इन्फाक नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी जगह नहीं थी, यहाँ ज़रूरत नहीं थी, जब ज़रूरत नहीं थी तो नाहक है, और नाहक पे खर्च करना इसराफ है, नाहक पे खर्च करना इसराफ है। अब सुनिए अमीर अल-मोमिनीन का फरमान, माल का नाहक अता कर देना भी इसराफ है, माल का नाहक अता कर देना भी इसराफ है। अगर ये अमल इंसान की दुनिया में बुलंदी का बायस बने, अब नाहक अता किया है लेकिन वाह वाह हो गई, सब लोग कहते हैं कि ये तो राय खुदा में इतना देता है, उसकी तारीफ़ों पे तारीफ़ें हो रही, दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है, दुनिया में लोगों की नज़र में उसका मर्तबा बुलंद हो चुका है, लेकिन उसने जो खर्च किया था वो नाक किया था, वो जगह बनती नहीं थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत पर नहीं किया है, इसका खर्च करना कमी को पूरा नहीं कर रहा था, को खला पुर नहीं हो रहा है इसके खर्च करने से, बल्कि नाहक, ज़रूरत नहीं थी, बस नाहक अता कर दिया है तो इसराफ है। और मौला क्या कह रहे हैं, अगर ये अमल इंसान की दुनिया में बुलंदी का बाइस बने भी तो आखिरत में उसे पस्त कर देता है, आखिरत में उसे पस्त कर देता है। अगला जुमला सुने, और अगर लोगों की नज़र में काबिल एहतराम बना भी दे तो खुदा की निगाह में जलील कर देता है। हो सकता है लोगों की नज़र में इज्जत बढ़ जाए, कुछ चंद तूने करोड़ दे दिए, तूने लाख दे दिए, और जहां हक था वहां नहीं दिए, ना दे दिए, ना अहल को दे दिए, तो फिर लोगों की नज़र में तो इज्जत हो सकता है बन गई उसकी, अल्लाह की नज़र में जलील है। अब अगला जुमला देखें, जब कोई शख्स अगली मुसीबत क्या आती है, ऐसे लोगों के ऊपर अगली मुसीबत क्या आती है, जब कोई शख्स माल को नाहक या नाअहल पर खर्च करता है तो परवरदिगार उसे उसके शुक्राने से भी महरूम कर देता है, यानी उस माल का शुक्र नहीं अदा कर पाता, ये उस नेमत का शुक्र नहीं कर पाता। अज़ान मोहतरम, बस याद रहे, हो सकता है कि आप अपने पूरे वजूद के साथ, पूरे शऊर के साथ इस नियत से आप खर्च कर रहे होंगे जैसे आपने राय खुदा में खर्च किया है, इस नियत से आपने खर्च किया हो कि आपने अल्लाह के रास्ते में दे दिया है, लेकिन मुतवज्जे रहे, रहबर बुजुर्गवार फरमाते हैं राय खुदा में खर्च करना ज़हीन लोगों का काम है, यानी ज़हीन होता है, समझदार होता है, वो देखता है कि उसका माल कहाँ खर्च हो रहा है। बस यहाँ इन्फाक का माना बता के आगे चलता हूँ, इन्फाक अरबी जुबान का लफ्ज़ है, कुरान मजीद में जहाँ पर भी अल्लाह ने खर्च करने की दावत दी है लफ्ज़ इन्फाक का इस्तेमाल किया है, और इन्फाक का माना क्या है, खला को पुर करना, खला को पुर करना, कमी पूरी करना, ज़रूरत पूरी करना, अगर आपने किसी ऐसी जगह खर्च किया है, किसी ऐसे काम में खर्च किया है, किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे खर्च किया है जिसकी ज़रूरत थी माशरे को, जिसकी ज़रूरत थी इंसानों को, जिसकी तलब थी इंसानों के लिए, तो फिर तो आपने इन्फाक किया है और आपके हर खर्च किए गए के बदले में आपको 10 गुना मिलेगा, 70 गुना मिलेगा, 700 गुना मिलेगा खुदा के बारगाह में। लेकिन अगर आपका खर्च करना ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा, कमी पूरी नहीं कर रहा, माशरे की असल ज़रूरत कुछ और थी, आपने किसी और चीज़ पे खर्च कर लिया, तो याद रहे इससे लोगों की नज़र में तो इज्जत बन सकती है, खुदा के यहाँ इस तरह से इज्जत नहीं बनती। मेरे मौला के बकौल दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब इसराफ की एक बच्चों के लिए, हम सब के लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुछ लोग थे खजूर खा के गुठली फेंक रहे थे, खजूर खाकर गुठली फेंक रहे थे, तो आपने गुठली को यूं फेंकने से मना किया, कहा कि इसको संभालो, बात चूँकि बाज़ खजूर की गुठलियाँ वो इलाज के लिए भी काम आती हैं और बाज़ बीज के तौर पर इस्तेमाल होंगी, तो इस गुठली को फेंकने से मना करते हुए इमाम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, फरमाया कि बर्तन की तह में, बर्तन की तह में आखिर में, बर्तन के आखिर में जो बचा हुआ पानी है उसको मत फेंको, क्योंकि ये भी इसराफ है, उसको मत फेंको क्योंकि ये भी इसराफ है। बच्चे जब पानी पीने के लिए जाते हैं, आप छोटे बच्चों के लिए सुन रहे हैं, छोटे बच्चे माशाल्लाह, पानी में गए आप, किचन में गए पानी पीने के लिए, गिलास में पानी ज़्यादा डाल दिया, आपने इतना पीना नहीं था, आधा पी लिया, आधा आपने गिरा दिया, तो ये क्या हो गया? इसराफ। ये क्या हो गया? फजूल खर्ची। और अल्लाह ने क्या कहा है? अगर फजूल खर्ची करोगे तो फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी। इसलिए आज के बाद प्लेट में खाना उतना डालें, गिलास में पानी उतना डालें जितना पीना है, जितनी आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं डालना इंशाल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये इसराफ है, फजूल खर्ची, जिसकी मजम्मत आपके सामने, इस्लाम ने इसकी मजम्मत की है, पसंद नहीं किया है। सबसे मेरे नज़दीक सबसे वो आखिरी दर्जे की बात क्या है? वो हुई खुदा की बात, सूरह नाम वाली, बंदे इसराफ न कर तुझे मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब इसराफ करना, फजूल खर्ची करना बहुत सख्त मसला है। अब आते हैं बुखल की तरफ। जिस तरह इसराफ की मजम्मत है, जिस तरह फजूल खर्ची की मजम्मत है, उसी तरह बुखल की मजम्मत है, उसी तरह कंजूसी की मजम्मत है कि ज़रूरत हो, ज़रूरत भी पूरी ना करे, कंजूसी कर रहा है, तो इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो इफरात में था, ये तफरीत में है। इसराफ करने वाला इफरात कर रहा है और बुखल करने वाला तफरीत कर रहा है, और दोनों के लिए मौला अली ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया? जाहिल है। जाहिल इफरात और तफरीत में होता है, जिसको इल्म होगा वो इफरात और तफरीत में नहीं होता। अब तवज्जो करें, बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की सूरत हाल होती है, या इस तरह से बयान किया जाता है, या लोगों ने इस तरह से सुना होता है कि कोई अच्छा खाना खा लेने से तकवा ख़राब हो जाएगा, या बच्चों को कुछ आसूदगी फराहम करने से मानवी हालत कमज़ोर हो जाएगी, या आसूदा रहने से इंसान इबादत के इबादत में कमज़ोर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जिस्म, ये बदन और रूह ने साथ साथ चलना है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी रूह मजबूत से मजबूत हो जाए और आपका बदन बेकार से बेकार हो जाए, ऐसा नहीं है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। इस्लाम जो पैगाम देता है, दीन जो, इस्लाम का जो पैगाम है इंसानियत के लिए, दीन इस्लाम जो तमाम दुनिया के साथ 8 अरब इंसानों को जो निज़ाम ज़िंदगी देना चाहता है, वो निज़ाम नहीं है कि जिसमें यह कहे कि इतने अपनी रूह की फ़िक्र किया करो, जिस्म को छोड़ो, जिस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी फ़िक्र रूह की करो, सारी फिक्र मानवियत की करो। तो याद रखिएगा, ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, ये दीन का पैगाम नहीं है। रहबर मौसम एक जगह फरमाते हैं, अगर कोई आपको मेहनत करने से रोक दे, कोई आपको दौलत कमाने से रोके, कोई आपको हरकत करने से रोके, कहे क्यों इतनी मेहनत करते हो, छोड़ो खुदा पे तवक्कुल करो, तो अगर रहबर कहते हैं समझ जाना ये इस्लाम का पैगाम नहीं है। इस्लाम आपको हरकत से नहीं रोकता, इस्लाम आपको काम करने से नहीं रोकता, इस्लाम आसूदा रहने से नहीं रोकता। याद रखे, नेमात दुनिया, इस दुनिया की नेमतों पर सबसे पहला हक मोमिन का है, नेमत पर हक मोमिन का है, खुद नेमत भी ये चाहती है। मैं एक जगह दोस्तों से अर्ज कर रहा था, ये जो फल होता है खुदा का बनाया हुआ, अनार हो कोई भी फल हो, उस फल की अपनी भी ख्वाहिश ये होती है कि किसी ऐसे मुंह में जाए कि जिससे जिक्र खुदा चल रही हो, किसी ऐसे दहन में दाखिल हो जाए, किसी ऐसे शख्स के वजूद का हिस्सा बन जाए। ये फल, ये अजनास, ये खाने पीने की चीज़ें, इनकी अपनी, क्योंकि कुरान की वाज़ह आयत है कि कायनात में मौजूद हर चीज़ खुदा की तस्बीह करती है, और हमें इंसानों से कहा कि तुम उनकी तस्बीह का शहूर नहीं रखते। ये फल हों, अजनास हों, खाने पीने की चीज़ें हों, इनकी खुद ख्वाहिश होती है, इनकी आरजू होती है कि उस मैदे में जाएं, उस बदन का हिस्सा बने कि जो बदन अल्लाह की इताअत में सरगर्दा हो, उस बदन का हिस्सा बने कि जिसको राय खुदा में पसीना आता हो काम करते हुए, उस वजूद का हिस्सा बने कि जिसके मुंह से सच्ची बात निकलती हो, उस वजूद का हिस्सा बने कि जो इंसानियत की खिदमत करता हो। बस याद रखिएगा, अगर आपको इस्लाम के नाम पर ऐसा पैगाम दिया जा रहा है, हत्ता कि इरफान के नाम पर, क्योंकि इरफान का शौक़ होता है बाज़ लोगों को, अगर कोई आपको आरिफ बनाने के लिए इरफान के मौजू पर इस तरह की हरकतें आपसे करवा ले कि बेटा दुनिया छोड़ दो, सारी फिक्र आखिरत की करो, तो उसे आप बड़े प्यार से बताएं, बेटा मैंने इस्लाम पूछा है, ईसाई मज़हब नहीं पूछा है, क्योंकि ये तो ईसाई मज़हब है कि तुम दुनिया को छोड़ो, आखिरत की फिक्र करो, फ़कत रूहानियत की फिक्र करो, ये तो ईसाइयत में होता है। और रसूल खुदा की वाज़ह हदीस है, ला तबत्तुल वला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में तबत्तुल और रहबानियत नहीं है, तर्क दुनिया नहीं है इस्लाम में। अब आपको जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ, रसूल खुदा की हदीस, मैंने तो अपने मनाबे में देखी थी, हमारी किताबों में, लेकिन आज जब वो गूगल पे इसके एक लफ्ज़ के माने के लिए मैंने चेक किया तो अहले सुन्नत के मनाबे में भी यही हदीस मौजूद है। इसका मतलब ये जो हदीस मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये दोनों तरफ मौजूद है, अहले सुन्नत के यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, और इसका ताल्लुक इसी ज़िंदगी के साथ है कि जिसमें बुखल करने से रोका जा रहा है, कंजूसी से रोका जाता है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रसूल खुदा की हदीस है, पूरी तवज्जो से समाज फरमाएं, मुसलमान आदमी की सआदत और खुशबख्तियों में से ये भी है, मुसलमान आदमी की सआदत और खुशबख्तियों में से ये भी है कि उसका ऐसा बेटा हो जो नेक कामों में उसकी शबी हो, यानी ऐसी औलाद कि जो नेकी में अपने माँ बाप की शबाहत इख्तियार करें, ये उसकी सआदत में से है, बाप की सआदत है। अगर आपका बच्चा, आप अगर नेक काम अंजाम देते थे, आप कोई इलाही काम अंजाम देते थे, आपका बेटा उसी काम में आपके साथ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि आपका बेटा भी वही काम करे, तो ये सआदत है अल्लाह के नबी के मुताबिक। पहली सआदत बताई कि उसका बेटा हो जो नेक कामों में उसकी शबी हो। दूसरी सआदत उसकी बीवी दीनदार और खुश शक्ल हो, दीनदार होना और खुश शक्ल होना ये भी सआदत। अब उसके बाद दो चीज़ें गिनवाई, उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, और वो आरामदेह सवारी और कुशादा घर का मालिक हो, यानी उसकी आरामदेह सवारी हो और घर उसका कुशादा हो, तंग घर ना हो। तंग घर के बारे में भी एक रवायत पढ़ी मैंने, इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम, अजान मत, इमाम हुसैन काज़िम के ग़ुलाम था जिसको मौला ने आज़ाद किया हुआ था, आज़ाद करता ग़ुलाम था, तो इमाम को पता था कि उसका घर तंग है, بہت تنگ گھر میں رہتا ہے بچوں کے ساتھ. تو امام نے ایک گھر خریدا, نسبتاً کشادہ گھر, ساتھ میں امام نے خود خریدا. خرید کر اسے بلوایا اور اسے کہا کہ میں نے فلاں گھر تمہارے لیے خریدا ہے, جس گھر میں تم رہتے ہو وہ تنگ ہے, تو تم وہاں پر منتقل ہو جاؤ, شفٹ ہو جاؤ وہاں پہ. تو اس نے کہا مولا میرے لیے وہی گھر کافی ہے, اچھا ہے, تنگ ہے لیکن ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہ میرے بابا کا گھر تھا تو وہ میرے باپ کی نشانی ہے, اس لیے میں اس گھر سے نہیں نکلنا چاہتا. یہ مسئلہ میں نے عرض کیا, یہ مسئلہ بھی ہمیں اکثر پیش آتا ہے کہ ماں باپ کی نشانی ہے, وہ جو بھی کہیں چھت ہے یا فرش ہے ماں باپ کا. جب اس نے یہ کہا نا وہ میرے باپ کی نشانی ہے, میں تو تنگ ہو پھر بھی مسئلہ نہیں, مجھے اس میں مزہ آ رہا ہے. امام نے جو جواب دیا کہا ان کان ابوک احمق ینبغی ان تکون مثلہ, کہا اگر تمہارے باپ نے غلطی کی تھی, اگر تمہارے باپ نے غلطی کی تھی تو کیا تم بھی اسی غلطی پر باقی رہو گے؟ یعنی تمہارے باپ نے غلطی کی, وہ تنگ میں رہا, کوشش نہیں کی وسعت کے لیے, کھلی جگہ کے لیے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اسلام کا جو طرز تعمیر ہے, اسلام کا جو گھر بنانے کا, بلڈنگ بنانے کا جو تصور ہے, کنسیپٹ ہے, اس میں صحن ہے, صحن جس میں آسمان نظر آئے, جس میں تارے نظر آئیں, جب بارش برسے تو صحن میں ہو. تو لہٰذا یاد رکھیے گا کشادہ گھر بندہ مسلمان کی سعادت ہے. بس یاد رکھیں اگر اس طرح کے بن جائیں خرچ کرنے کے معاملے میں کہ آپ کے اہل و عیال تنگی میں بسر کر رہے ہوں, آپ کے پاس ہونے کے باوجود اگر آپ کے اہل و عیال تنگی میں بسر کر رہے ہیں تو آپ بخیل ہیں. آپ کی دولت آپ کے پاس جتنا معیار ہے اور آپ اس کے مطابق ضرورت پوری نہیں کرتے اپنے خانوادے کی. یہاں پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, میں نے جو کہ پڑھا ہے تو سیستانی سے پوچھا گیا نا عورت کو نان و نفقہ دیا جاتا ہے, مرد کے ذمے جو ہے نان و نفقہ عورت کو, تو اس میں جو لسٹ آگا نے گنوائی جس میں عورت کو آپ یہ چیز یہ چیز یہ چیز, شاید اس جملے کے بعد بہت سارے ہمارے مردوں کے لیے مشکل نہ بن جائے, لیکن چونکہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. تو آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں اگر نان و نفقہ اگر کسی ایسے علاقے میں ہے اور صرف گنجائش ساتھ میں رکھی ہے, گنجائش ایسا نہ ہو آج گھروں میں لڑائی ہو جائے, اگر صرف گنجائش ساتھ میں رکھی ہے, کیا گنجائش ہو تو پھر وہ اس کو ایسا یعنی گھر کو ایسا رکھے کہ بہت گرمی ہو تو گھر ٹھنڈا رہے اور بہت سردی ہو تو وہ گھر گرم رہے. ایسی غلط استعمال نہیں کر رہا ورنہ مشکل ہو جائے گی. درود پڑے محمد والے محمد پر. اذان محترم آپ کے سامنے چار چیزیں اللہ کے نبی نے گنوائی ہیں جو سعادت ہے بندہ مسلمان کی, صالح بیٹا, دیندار بیوی, آرام دہ سواری اور کشادہ گھر. اب جن کے پاس نہیں ہے اس کے لیے کوشش کریں. اب اس سے بھی ایک منفی مانا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات کی ہمارے حق میں بات آ رہی ہے کہ اگر بیوی دیندار نہیں ہے تو پھر کوشش کریں, یعنی اگلی طرف نہ جائیں اسی بیوی کو دیندار کرنے کی کوشش کریں. درود پڑے محمد والے محمد پر. تو اگر ایسا کسی نے کچھ کیا تو اس کے بارے میں میں یہ پہلے ہی کہہ دوں کہ عموماً کہا جاتا ہے نا اس کے اگر کوئی مضر اثرات نظر آئے تو کمپنی اس کے ذمہ دار نہیں ہے, اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. پھر درود پڑے محمد والے محمد. جناب ابو لبابہ یا ابو لبانہ رسول خدا کے صحابی ہیں, انہوں نے ایک خبر لیک کر دی تھی یہودیوں کو, پھر بعد میں نے خود احساس ہو گیا کہ میں نے تو غلط کر دیا ہے, تو اب توبہ کے لیے انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا, رسول اللہ کے پاس نہیں گئے شرم کی وجہ سے, مسجد کی ستون سے باندھ دیا اور کہا جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوتی اور خدا کی طرف سے آیت نہیں آتی میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا, میں خود کو یہاں سے آزاد نہیں کروں گا. کچھ دن بعد آیت آ گئی اور ان کی معافی کا اعلان ہو گیا. جب معافی کا اعلان ہوا رسول خدا آئے, آپ نے خود ان کو کھولا تو ابو لبانہ جی خوش ہوا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابو لبابہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا آدھا مال رائے خدا میں دے دوں, आधा माल। अल्लाह के नबी ने मना कर दिया, कहा नहीं आधा माल मत दो। उसने कहा फिर मैं अपने माल का तीसरा हिस्सा दे देता हूँ। आपने कहा तीसरा हिस्सा दे दो। आधे से मना क्यों किया? ऐसा ना हो आधा राय खुदा में दे दे और उसके औलाद और बाद में बच्चे मुश्किल में आ जाएं। आखिरी वाक्य सुने, उस पर ये मौजू मुकम्मल हो गया। एक शख्स का इंतकाल हुआ मदीने में। इंतकाल होने से पहले जब बिस्तर मर्ग पर था तो इसके 6 गुलाम थे। उसने 6 के 6 गुलाम आज़ाद कर दिए। जब ये मर गया, फौत हो गया, तो उसके मरने के बाद इसके बच्चे तकलीफ़ में आ गए, तंगी में आ गए, यहाँ तक कि किसी से मांग कर खाना पड़ा। रसूल खुदा को पता चला कि इसके ये हो गया है। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर उसके मरने के वक़्त मुझे पता चलता कि उसने 6 के 6 गुलाम आज़ाद कर दिए हैं तो मैं उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त न देता। कि उसने ऐसा काम क्यों किया कि बाद में उसके बच्चों को तंगी में रहना पड़ा, बाद में उसके बच्चों को दूसरों का मोहताज बनना पड़ा। पस अज़ान मोहतरम, न इसराफ न कंजूसी, एतदाल में रहना है। चाहे बीवी बच्चों पे खर्च करना हो, ऐसा ना हो, यहाँ पर मोमिनात हैं, ऐसा ना हो कि आप अपने घर की आराइश के नाम पर महंगी महंगी चीज़ें लेकर डेकोरेशन पीस करके अपने घर पे सजाएं और आपके घर पे काम करने वालों के घर में खाने को रोटी पूरी ना होती हो। ये इसराफ है। घर को सजाने के लिए ऐसा खर्च कर देना, महंगी महंगी चीज़ें ले आना, अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर एक चीज़ पक्की है, वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। और अगर खुदा की मोहब्बत से महरूम होंगे तो फिर बच सके फिर बाद में। लिहाजा इबादुर रहमान की सिफत क्या है कि ना इसराफ करते हैं ना बुखल करते हैं, एतदाल में रहेंगे। चाहे माल खर्च करना हो, चाहे टाइम खर्च करना हो, चाहे सलाहियत खर्च करनी हो, एतदाल में रहेंगे। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस अज़ान मोहतरम, अय्याम अज़ा जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, आशूर जितना करीब आता जा रहा है, मोमिन की जो हालत है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद इमाम मूसा काज़िम के बारे में बताते हैं कि जब मुहर्रम का चांद तुलू हो जाता था तो मेरे वालिद के चेहरे से मुस्कुराहट के, खुश होने के आसार ख़त्म हो जाते थे। और जू जू आशूर का दिन करीब आता जाता था, मेरे बाबा के चेहरे के हुज़्न व गम में इजाफा होता जाता था। यहाँ तक कि जब रोज़ आशूर आता था तो मेरे वालिद के गिरिए की और चीख कर रोने की आवाज़ें बुलंद होती। आज जिसका ज़िक्र करना है, एक ऐसे शहीद के, करबला के ऐसे शहीद का ज़िक्र करूँ, ये वाहिद शहीद है कि इजाज़त मांगने आया तो सैयद शहदा ने इतना गिरिया किया कि बेहोश हो गए, गश खा गए। अज़ान मोहतरम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलातु वस्सलाम करबला में मौजूद नहीं है। 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत हुई है, उसके 10 साल बाद करबला का वाक़िया है, लेकिन इमाम हसन की नुमाइंदगी करबला में मौजूद है। ऐसे ही मौजूद है जैसे इमाम हसन खुद मौजूद हों। हसन मुसन्ना मौजूद हैं, कासिम बिन हसन मौजूद हैं। 13 साल के जनाब कासिम शब आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि तुम में से चराग बुझाकर कहा कि जो जाना जो चला जाए, जाने के लिए कहा, लेकिन जब कोई नहीं गया, उसके बाद इमाम ने जब बताया कि कल हम सब शहीद हो जाएंगे, तो उस वक़्त जनाब कासिम खड़े होके कहते हैं, खड़े होकर सवाल क्यों पूछा? क्योंकि सब बड़े बैठे हुए थे, सारे जवान बैठे हुए थे। इमाम ने कहा हम सब शहीद हो जाएंगे, तो अमूमन बच्चों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। तस्दीक करने के लिए खड़े हो गए, कहे चाचा जान क्या कल के शहदा में मेरा नाम भी है? कितने शौक से, कितनी चाहत से, कितनी रगबत है शहादत के साथ, चाचा जान कल मेरा नाम भी है? इमाम ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं कहा कि नाम है या नहीं है, सवाल किया, कहा कासिम मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है, तुम्हें मौत कैसी लगती है? हज़रत कासिम कहते हैं चाचा जान शहद से ज़्यादा मीठी लगती है। जब कहा ना शहद से ज़्यादा मीठी लगती है, कहा कासिम तुम कल के शहदा में शामिल हो, तुम 13 साल के हो, लेकिन कल के शहदा में तुम तो छोड़ो, हमारा अली असगर भी कल के शहदा में शामिल है। जब कहा ना अली असगर भी शामिल है तो जनाब कासिम ने तड़प के एक जुमला कहा, है 13 साल का लेकिन है बनी हाशिम, है हसन इब्न अली का बेटा, है तो अली का पोता, गैरत है ना। जो ही कहा ना अली असगर को भी शहीद हो, अली असगर भी शहीद हो जाएंगे। कासिम तड़प के कहते हैं, मौला चचा क्या ये अशकिया हमारे खेमों में दाखिल हो जाएंगे, क्या हमारे खेमों के अंदर आ जाएंगे ये? इमाम ने कहा नहीं, मैं खुद अली असगर को लेकर जाऊंगा। सुबह आशूर अस्हाब करबला ने इमाम हुसैन से आकर गुजारिश की, मौला हमारी दरख्वास्त है कि जब तक हम जिंदा हैं बनी हाशिम में से आपके घराने में से किसी को एक तीर भी ना लगे, आप इजाज़त दें तो जंग का आगाज़ हम करें। हबीब ने इजाज़त मांगी, इमाम ने इजाज़त दे दी, जबकि रसूलुल्लाह की ये रविश नहीं थी इससे पहले। रसूल खुदा जब जंग होती थी तो पहले अपनों को भेजते थे, लेकिन करबला की जंग में थोड़ा सा मामला अलग था। करबला की जंग में जो जितना देर से जाएगा उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्यास जो जितनी देर से जाएगा उसकी प्यास बढ़ जाएगी और उसके दिल पर ज़ख्म लगेंगे साथियों के जो शहादतों की वजह से, वो अलग। जब वक्त गुजरा, जोहर गुजरा, असहाब जब मुकम्मल हुए, उसके बाद बनी हाशिम का मरहला शुरू होता है। सबसे पहले अली अकबर गए, अली अकबर के फौरन बाद हज़रत कासिम का नाम है। कासिम आए चचा के पास, सलाम किया, कहा चचा इजाज़त देंगे कि मैं जाऊं? जब ये कहा ना मैं जाऊं, मौला हसन मौलवी मौला हसन कहते हैं, कासिम तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, तुम्हें देखकर अपने भाई हसन को याद किया करता हूं, कैसे तुम्हें इजाज़त दूँ? इल्तिजा की, चचा जाने दें, इजाज़त दें। अज़ादारों जब ये कहा तो यहाँ पर दो रवायात अमूमन पढ़ी, एक रवायत जो पढ़ी जाती है कि बाजू में तावीज़ था इमाम हसन का कि जो खोल के, इस रवायत को चूँकि लुहूफ ने नहीं लिखा है और मुस्तनद किताबों में अमूमन ये मौजूद नहीं है, मैं वो पढ़ूंगा जो मौजूद है। क्या कैसे इजाज़त हासिल की है इमाम हुसैन से? 13 साल के हसन के बेटे कासिम के जज्बे शहादत को देखें। कहा चचा मुझे इजाज़त दे मैं चला जाऊं। इमाम कहते नहीं कासिम तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता, भाई का यतीम है ना। एक दफ़ा कासिम ने इमाम हसन इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मौला का हाथ चूमा, बोसा देकर कहते हैं चचा मुझे इजाज़त दे जाने की, इजाज़त नहीं मिली। दूसरा हाथ उठाकर बोसा दिया, कभी पेशानी का बोसा देकर कह रहे चचा जाने दे, जब इजाज़त नहीं मिली। रवायत में है मौला इमाम हुसैन के कदमों में हज़रत कासिम गिर जाते हैं, जाकर पाँव का बोसा लेना चाहते हैं, कहते चचा मुझे जाने दें। जब इतनी बेचैनी और बेकरारी देखी, मौला हुसैन ने उठाया कासिम को, गले से लगाकर गिरिया किया, बुलंद आवाज में हुसैन रोए, इतना रोए कि गश खा गए। उसके बाद कासिम को इजाज़त दी, मौला अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास मेरे कासिम को तैयार करो और मैदान में भेजो। यहाँ आगा पनायान के एक जुमला हर्ज करता हूँ, कहते हजरत अब्बास जनाब कासिम को लेकर वहाँ आए जहाँ सिपाहियों की वर्दियाँ पहनाई जाती हैं। अब हजरत अब्बास की हालत पता नहीं क्या होगी, यतीम भतीजा है, 13 साल की उम्र है, हजरत अब्बास जो ज़रा पहनाते हैं बड़ी है, सर पर खोद रखते हैं बड़ा है, कोई वर्दी पूरी नहीं आ रही। जब नहीं आ रही, हजरत अब्बास की आंखों से आंसू जारी होते हैं, कहते कासिम मेरे भतीजे तुझे कैसे भेजूं इस हाल में? कासिम कहते हैं चचा खुदा का वास्ता है मुझे इसी तरह भेज दे, मौला हुसैन से बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेकर आया हूँ। अज़ादारों कासिम को कैसे रवाना किया? सर पर अमामा बांधा हुआ है, बदन पर एक कमीज़ है। उसके बाद जब घोड़े पर सवार होकर निकल आए, अब यहाँ पर हमीद बिन मुस्लिम का जुमला है। हमीद बिन मुस्लिम यजीद के लश्कर का रावी है, जिसने करबला के वाक़यात को लिखा है। हमीद बिन मुस्लिम का एक जुमला है, वो कहता है मैं उस चांद से चेहरे वाले बच्चे को नहीं भूल सकता, जब वो हुसैन के खेमों से निकला तो उसके जूतों में से एक जूते का तस्मा खुला हुआ था। अगर मैं ये कहूँ ए हमीद बिन मुस्लिम अगर तू नहीं भूला है तो न जाने उम्मे फरमा कैसे भूली होंगी कासिम को। आए मैदान में, अब इधर थोड़ा सा उस मंजर को जहन में लाएं, यतीम भतीजा मैदान में लड़ने गया है, एक तरफ अब्बास और एक तरफ हुसैन, दोनों चचा खड़े होकर भतीजे की जंग देख रहे हैं। यहाँ उमर साद ने शाम का जो पहलवान था अजरक शामी, उससे कहा जाओ इसके मुकाबले में। अजरक कहता है मेरी तोहिन कर रहे हो कि एक बच्चे के मुकाबले में जाऊं। ये कहकर उसने अपने बेटे से कहा, छोटे बेटे से कहा कि जाकर उसका मुकाबला करो। अब यहाँ ये आया ख़याम में ख़वातीन की निकान हज़रत अब्बास और मौला हुसैन की सदा के साथ लगी हुई हैं, कासिम मैदान में हैं। अजरक का छोटा बेटा आया, हज़रत कासिम ने एक ही बार में उसका सब काम तमाम किया। मौला हुसैन और हज़रत अब्बास की सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा सुनी। उम्मे फरवा खेमे के दरवाजे पर है, दिल से कह रही है जज़ाकल्लाह मेरे बेटे, शाबाश हो तुझ पर, मेरा दूध हलाल है तुझ पर। अजरक का दूसरा बेटा आया, जनाब कासिम ने उसे भी वासिले जहन्नम किया। हजरत अब्बास की सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, खेमे में ख़वातीन को हौसला। तीसरा बेटा आया, उसे भी वासिले जहन्नम किया। चौथा बेटा आया, जब चार बेटे वासिले जहन्नम हुए, अब अजरक शामी खुद खड़ा होकर आया। अब जब अजरक आया, हजरत अब्बास ने सदा दी, कासिम जरा ध्यान से मेरे बेटे। लेकिन अजादारो, अली का पोता अजरक शामी को भी वासिले जहन्नम कर दिया। जब अजरक शामी को वासिले जहन्नम किया, तो यहाँ उमर साद ने ललकार के अपनी फौज को कहा, ए फौज, तुम किससे एक एक होकर लड़ने जा रहे हो? इसको बच्चा मत समझो, ये अली का खून इसके रगों में दौड़ रहा है, एक साथ हमला करो। जब कहा ना एक साथ हमला करो, अजादारो, अब हमला हुआ। जिसके हाथ में जो था, किसी ने तलवार का वार, किसी ने नेजे का वार, कहीं से तीर आ रहा है। यहाँ तक कि अमर इब्ने साद अजदी मलऊन ये आगे बढ़ा, इसने इस अंदाज में कासिम के सर मुबारक पर वार किया। सर पर खुद तो था नहीं, तलवार सर पर ऐसे लगी, कासिम जमीन पर आते हुए सदा दी, या अम्मा अदरकनी, ए चचा मेरी मदद को पहुंचिए। रवायत का जुमला है, मौला हुसैन ऐसे तैयार खड़े थे कि जैसे बाज अपने शिकार पर झपटता है। हुसैन ने हमला कर दिया, आए कासिम के सिरहाने, लेकिन देखा कि कासिम रेहड़ियाँ रगड़ रहे हैं। देखा तो मौला हुसैन ने गोद में कासिम का सर रखा हुआ है और गिरिया करते हुए कह रहे हैं, ए मेरे कासिम, तेरे चचा पर कितनी बड़ी मुसीबत है कि तू मदद के लिए पुकारे तो तेरी मदद को ना पहुंच सके, या ऐसे वक्त में पहुंचे कि मदद का फ़ायदा ना हो। बस शहीद मुतहरी के इस जुमले के साथ ख़त्म करो मसाइब को। आज़ादार शहीद मुतहरी कहते हैं, कासिम जब मैदान में आए थे तो अपने घोड़े पर सवार होकर कासिम मैदान में आए, और मैदान में आने से पहले इमाम हुसैन को जब गले लगाया था तो कासिम के दोनों बाजुओं ने मौला हुसैन को भेज लिया था। हजरत शहीद मुतहरी कहते हैं, अब जब शहीद मुतहरी कहते हैं, अब जब करबला के मैदान में कासिम जीन से ज़मीन पर आ गए, अब भी कासिम को हुसैन ने गले लगा लिया था, लेकिन हालत क्या थी, कासिम के दोनों बाजू लटक रहे थे, हुसैन को भींचे हुए नहीं थे। कासिम का जनाजा लेकर खेमे की तरफ जब चले, कासिम के पांव जमीन पर निशान डाल रहे हैं। उम्मे फरवा ने कासिम का जनाजा देखा तो बस एक ही जुमला कहा, कासिम तेरी माँ तुझसे राजी है, तूने माँ को राजी कर दी। अलानतुल्लाहि अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बी यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।